ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम स्कंद 7 अध्याय 2 श्लोक नंबर 41 बोर्ड पर लिखा हुआ है 41। कृपा करके आप लोग मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिएगा। भूता नितस्तर निज योनि कर्म भे, भूता नितस्तर निज योनि कर्म भे, भवन्ति काले न भवन्ति सर्वसा, न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थिता, तस्या गुणैरन्यतमो हि वध्यते। भूतानि तैते निजयो न कर्म भे, भवन्ति काले न भवन्ति सर्वसा, न तत्र आत्मा प्रकृतापि विस्थिता, तस्या गुणैरन्यतमो हि वध्यते। भूतानि तैते निजयोनि कर्म भे, भवन्ति काले न भवन्ति सर्वसा, न तत्र आत्मा प्रकृतापि स्थिता, तस्या गुणैरन्यतमो हि वध्यते। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य इसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। मेरे पीछे शब्दों को दोहराइए। भूतानि जीवों के समस्त शरीर, तय तय अपने अपने, निज योनि अपने शरीर उत्पन्न करके, कर्म भी पूर्व कर्मों के द्वारा, भवन्ति प्रकट होते हैं, काले काल क्रम से, न भवन्ति अदृश्य होते हैं, सर्वसह सभी तरह से, न नहीं तत्र वहाँ, हे निसंदेह आत्मा, आत्मा प्रकृतौ इस भौतिक जगत के भीतर, अपि यद्यपि स्थितः स्थिति, तस्या उस भौतिक जगत के या भौतिक शक्ति के, गुणै विभिन्न गुणों के द्वारा, अन्यतमः अत्यंत भी, हे निसंदेह बद्धते बांधा जाता है। अनुवाद, अनुवाद को मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, उसके बाद मेरे पीछे दोहराइएगा। प्रत्येक बद्ध जीव अपने कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का शरीर पाता है, और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। यद्यपि आत्मा विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में स्थित रहता है, किंतु वह उनसे बंधा नहीं रहता, क्योंकि वह व्यक्त शरीर से सदा सदा पूर्णतया भिन्न माना जाता है। कृपया इस अनुवाद को दोहराइए। प्रत्येक बद्ध जीव अपने कर्म के अनुसार भिन्न प्रकार का शरीर पाता है और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। यद्यपि आत्मा विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों का सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में स्थित रहता है किंतु वह उनसे बंधा नहीं रहता, क्योंकि वह व्यक्त शरीर से सदा सदा पूर्णतया भिन्न माना जाता है। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम इस प्रथम चतुर्मास के प्रथम मास में श्रीमद् भागवत के कक्ष में आए हुए भक्तों को धन्यवाद तथा अपने आराध्य देव श्री राधा राधिका रमण के चरणों में प्रणाम करते हुए इस पवित्र ग्रंथ का पाठ करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जिस कथा प्रसंग को हम लोग सुनते आ रहे हैं यह प्रसंग अपने आप में एक सिद्धांत व्यक्त करता है। क्योंकि इस कथा के अंदर इस खास करके इस अध्याय में प्रसंग को अलग अलग कथाओं से जोड़ करके सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है। अब 12 महाजन में से यमराज जी इस प्रसंग को सुना रहे हैं और उस परिस्थिति में सुना रहे हैं जब सुयज्ञ नामक व्यक्ति के परिवार लोग जब दुख से संतप्त हैं तो उस परिस्थिति में यह उपदेश दे रहे हैं। और यह उपदेश केवल उन्हीं परिवार के लिए, सुयज्ञ नामक ब्राह्मण के परिवार के लिए ही यह नहीं है, यह समस्त संसार में फंसे हुए जीवों के जीवन में जरूरी चीज उतारने लायक यह उपदेश हम लोगों को कहा जा रहा है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, लेकिन अर्जुन उतने मोहग्रस्त नहीं थे जितने कि मोहग्रस्त हम लोग हैं। क्योंकि एक कवि ने लिखा है कि अर्जुन जी भगवान के नित्य सखा है, वो कभी भगवान के संगति से दूर नहीं गए। तो इस प्रसंग से या इन उपदेशों से अगर हमें अपने जीवन में शिक्षा ग्रहणीय है, वह यह चीज है कि पहले हम कहाँ जुड़े हैं, हमारा जो आसक्ति का जो मजबूत बंधन है कहाँ हमें घसीट करके बांध दिया है। कहने को तो हम लोग उपदेश देते हैं, प्रवचन बड़े बड़े देते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर इस प्रकार की घटना घटती है तो सारे ज्ञान भूल जाते हैं। लेकिन यह ज्ञान भूलना ही हम लोगों को इस संसार में फिर ला देता है। आगे इसी अध्याय के अंदर बताया जाएगा कि अगर जो इस ग्रहणीय विषय को अपने जीवन में उतार लेगा वह व्यक्ति संसार के किसी भी बंधन में नहीं बंधेगा। और इस श्लोक में भी लास्ट में शब्द आया है बाध्यते पद्धते। हम लोग कहां बंधे हुए हैं तो शरीर से, अगर शरीर से थोड़ा सा बंधन कमजोर है तो और मजबूत बंधन कहाँ है कि देहज से, देहज तीन अक्षर है, मतलब देह से उत्पन्न होने वाले अपने बच्चों से। और तीसरा बंधन कहाँ है तो जो देह संबंधी वस्तुएं हैं, घर है, गाड़ी है, अपने संबंधी हैं, उनसे बंधे हैं। और यही बंधन हमें पुनः इस संसार में लाता है। यह उपदेश हिरण्यकश्यपु संतावना देते हुए अपने परिवार को समझाया, अपने माँ और अपने छोटे भाई के पत्नी को और उनके बच्चों को। और वही उपदेश एक सुजग्य नामक ब्राह्मण के इतिहास से, मतलब कथा से, जमराज जी इस प्रसंग को हम लोगों को समझा रहे हैं कि यह स्थिति लगभग सबकी होती है। और यह स्थिति को तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए हम इसी प्रकार की कथाओं में पूर्णतः विश्वास करके अगर सुनेंगे तो बंधन बंधन छिद्यते। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में यह शब्द आया है कि छिंदन्ति, सारे बंधन को हम तोड़ देंगे, छोड़ देंगे। इसी अध्याय में पीछे जाइए तो हिरण्यकश्यपु ने अपने दूतों को, जो उनके सहायक थे, उनको यह आदेश दिया कि जाओ और पांच काम करने वाले जो भी व्यक्ति मिले उनका वध कर देना। कहता है कि जो तपस्या कर रहे होंगे उनको मारना पहले। उसके पीछे उसका यह कारण था कि जो जिनका बंधन जिनसे जुड़ा हुआ है, उन बंधन को जोड़ने वाले और उन बंधन को स्थापित करने वाले, उनसे उनकी संगति में सहायता करने वाले, इन पांचों कर्म में लगे हुए व्यक्तियों का वध कर देना। जाओ, गांव में जाओ, वनों में जाओ और पृथ्वी के कोने कोने में जाओ और जहां पांच कार्य करते होंगे लोग, उनको सबको वध करके आओ। पहला शब्द उसने कहा कि जो तपस्या कर रहे होंगे उनको मारना, जो यज्ञ कर रहे होंगे उनको मारना, जो दान कर रहे होंगे उनको मारना, क्योंकि इनसे यज्ञ, जो यज्ञ करते होंगे उनको, जो तपस्या कर रहे होंगे, यज्ञ कर रहे होंगे उनको, जय जय श्री राधा राधिका रमण जी की, और जो स्व अध्ययन करते होंगे, जो अपने पठन पाठन में लगे होंगे, गीता भागवत आदि पाठ वगैरह करते होंगे, वैसे व्यक्तियों को मारना। और जो व्रत करते होंगे उनको मारना, और जो दान देते होंगे उनको मारना। पांच लोगों के प्रति संकेत किया, क्योंकि इनका संबंध एक कर्म करने का उद्देश्य ही है कि भगवान से जुड़े रहना, अर्थात विष्णु से अपना संबंध स्थापित करना। देखिए, हालांकि यह विरोधाभास में बोल रहा है हिरण्यकश्यपु, लेकिन यह भक्तों के लिए ग्रहणीय विषय है कि तपस्या हमें करनी चाहिए, व्रत हमें करना चाहिए, यज्ञ हमें करना चाहिए, स्व अध्ययन करना चाहिए और दान भी करना चाहिए, क्योंकि यह संबंध स्थापित करने के साधन है भगवान विष्णु से। और जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अपनी आसुरी के बल, अपनी आसुरी बल के प्रभाव से इन चीजों को मिटाना चाहते हैं। हालांकि वो भी जानते हैं कि यह दूर होने वाला नहीं है, विष्णु हमसे हारने वाला नहीं है, लेकिन उनका अथक प्रयास रहता है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने में नहीं हारते तो दुष्ट भगवान से विरोध करने में भी नहीं हारते। मरेंगे तो उसी के हाथ मरेंगे, उनके हृदय में ये भाव होता है। यहां हम लोगों को यह उपदेश दिया जा रहा है कि हम लोगों की उपज कैसे हुई। हम लोग इस मनुष्य शरीर में आए तो कैसे आए, इस श्लोक में बताया जा रहा है कि हमने निज योनि कर्म भी, हमने अपने मन से, बुद्धि से, शरीर से जो कर्म किए उसका यह फल है शरीर। अभी जो हम करेंगे वो हमें आगे मिलेगा, पीछे जो हम किए वह प्रस्तुत रूप में प्रत्यक्ष दिख रहा है। लेकिन इसको प्राप्त करने के बाद हमें कौन से विषय में, कौन से विषय को अपने जीवन में लागू करना चाहिए, इस पर जमराज जी विशेष जोर दे रहे हैं। भगवान के किए हुए करतूतों पर पूर्णतः विश्वास दिलाने के लिए यवराज जी बालक के रूप में आकर के और दुख से संतप्त उन बंधुओं को गुह्य रहस्य का उपदेश दे रहे हैं। श्लोक नंबर 38 के अंदर यवराज जी ने कहा कि तुम लोग जिसके लिए रो रहे हो वह तो तुम्हारे सामने पड़ा है, वह तो तुम्हारे सामने पड़ा है, लेकिन इतना विश्वास जरूर करो कि जो मां के गर्भ में जो मुझे रक्षा किया वही बचाएगा, और वो जब मारना चाहेगा तो कोई नहीं बचा पाएगा। विश्वास दिला रहे हैं यमराज जी कि जो जन्म लिया है वो निश्चित रूप से मरेगा, और जो मरेगा वो निश्चित रूप से जन्म लेगा। इस प्रकार का उपदेश श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के अंदर वसुदेव जी ने भी कंस को उपदेश दिया कि आद्यवाद सतांते वा मृत्यु नाम प्राणी नाम ध्रुव, कि हे कंसराज आप अपने को बचाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हो कि देवकी और वासुदेव को ही मारना चाहते हो, मतलब जड़ को ही खत्म करना चाहते हो, तो जिस दिन आपका शरीर जन्म लिया उस दिन ही साथ साथ आपकी मृत्यु भी जन्म ले चुकी है, क्योंकि देह के साथ साथ जन्म और मृत्यु दोनों निश्चित हो जाते हैं। और हम लोग अपने अविद्या के कारण इस गुह्य ज्ञान के विषय को अपने हृदय में रख नहीं पाते, जिसके कारण पढ़ने को पढ़ लिए, सुनने को सुन लिए, लेकिन वही के वही है, कोई परिवर्तन नहीं। अगर कोई बालक भागवत के रहस्य तत्व को वर्णन करने लगे तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, इतना छोटा सा बालक इतना गुह्य रहस्य कैसे बता रहा। तो मूलतः उनका ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने के लिए जमराज जी बालक रूप में वहां बोले कि ध्यान से सुनो, हम तो छोटे हैं आयु में लेकिन मेरे व्यातों को सुनो, तुमसे तो मैं छोटा बालक अच्छा हूं कि मुझे इतना विश्वास है कि जो भगवान मुझे मां के गर्भ में रक्षा किया वो तो मेरी रक्षा अभी भी कर रहा है। तुम लोग हमसे आयु में बड़े हो फिर भी तुम लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं है। बहुत जोर देकर के जमराज जी वहां कहते हैं, अगर इससे आगे वाले श्लोकों में पढ़ेंगे तो बताए हैं कि अरे मूर्खों, डांटते हैं कि तू जिस शरीर जिस नाम का शरीर था वह शरीर तो तुम्हारे पास पड़ा है, ना वो हिल रहा है ना बोल रहा है ना चल रहा है ना कुछ कर रहा है, और उसी के लिए तुम इतने संतप्त हो। और एक जीवन नहीं, वो कहते हैं कि ऐसे 100 वर्ष तक अगर विलाप करते रहोगे, रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, तब भी यह जो शरीर के अंदर जो था वह नहीं आने वाला है। और यह प्रत्यक्ष सबके जीवन में होता है, हम लोग प्रतिदिन देखते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन कोई मरता ना हो। हम लोगों ने देखा है वाराणसी में एक मणकलिका घाट है जहां लाश जलाने की लाइन लगी रहती है, 10-20-50 जल रहे होते हैं तो 10-20-50 रखे रहते हैं और 10-20-50 लाइन में आ रहे होते हैं। वहां जाने के बाद कुछ साहस मिलता है, वो हम ही केवल और हमारे संबंधी नहीं मर रहे हैं और किसी के भी मर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष देखने के बाद भी हम वहीं के वहीं। इस श्लोक के अंदर लिखा गया है कि यह क्यों हम वहीं के वहीं क्यों हैं, तो इसके पीछे केवल अविद्या है, अज्ञानता है। जिसको हमने मान लिया है, जिसको अपने इस बुद्धि से बांध लिया है, मन से बांध लिया है, शरीर से बांध लिया है कि यह मेरे और यह मेरे हैं और यह मैं हूं, देह और देहज यही दोनों को बांध रखे। और इस सिद्धांत को अक्सर करके हम लोग तब समझ पाएंगे जब इस शारीरिक धरातल से जब तक हम अपने को ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक यह अज्ञान सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे, लेकिन उस स्थिति में हम नहीं आ पाए, क्योंकि जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक कुछ पाएंगे नहीं। क्योंकि कुछ करके हम इस शरीर में आए हैं और इस शरीर से कुछ करेंगे तो हमें कुछ और आगे मिलने वाला है। प्रत्येक बद्ध जीव अपने कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का शरीर पाता है और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो साथ साथ उसका शरीर भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि जिस शरीर से उसने कर्म किया था उस शरीर को पाया, उस शरीर को विनष्ट किया, उसका कर्म भी समाप्त हुआ तो अगला फिर शुरुआत हो चुके। यद्यपि आत्मा विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में स्थित रहता है किंतु वह उनसे बंधा नहीं रहता। इसी पर ज्यादा जोर दिए हैं जमराज जी कि चाहे हम किसी भी शरीर में आत्मा का स्पष्टीकरण है, अगर आत्मा है तो शरीर है, अन्यथा वो शरीर भी नहीं है। और इसी को, उस आत्मा को हम बना हुआ किसी शरीर से न देखें, यही असली ज्ञान है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आगे के श्लोक में उदाहरण दिया जाएगा कि काठ में अग्नि है लेकिन वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहे, बादल सर्वत्र हैं, बादल सर्वत्र हैं, सब पर छाया प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बादल की स्थिति सर्वत्र महसूस हो रही है, लेकिन बादल इस और इन स्थितियों से अलग है, उसका उदाहरण में बताया गया है। और तीसरा एक और उदाहरण दिया हुआ है कि देह, देह में जो कुछ है वो असली स्थिति को हम तब समझ पाएंगे जब जिससे यह शरीर चल रहा है उसके गुणों में और शरीर के गुणों में तुलना करेंगे तो पता चल जाएगा असलियत का, कि हम क्या है, हमारी स्थिति क्या है। क्योंकि वह व्यक्त शरीर से सदा सदा पूर्णतया भिन्न माना जाता है, क्योंकि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। और इसी चीज को समझने में पता नहीं कितने जीवन लगेंगे, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या करना चाहिए, किससे हमारा संबंध जुड़ा रहना चाहिए, इन बातों पर कभी ध्यान ही नहीं आता। जबकि शास्त्र एक स्वर से कहता है कि पहले विचार करो कि तुम कौन हो, जिसको वेदांत लोग अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा के रूप में व्यक्त करते हैं। और यही प्रश्न अगर हम लोग जिज्ञासा ही नहीं करते तो उत्तर जानने का कहां से प्रयास करें। अब इसके संबंध में प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद महाराज की। यह अस्पष्ट बताया गया है कि जीव द्वारा विभिन्न शरीर धारण किए जाने के लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। जो हमने किया वो हमने पाया। एक कवि ने लिखा है कि माया को सब जपते हैं, भजते हैं, लेकिन माधव को कोई नहीं भजता है। माया को सब भजन करे, माधव जपे न कोई। अगर यद्यपि माधव जपे तो माया चेरी हो, अगर माधव का हम अगर जप करते हैं, उनका भजन करते हैं, तो माया उसकी दासी बन जाती है, चेरी बन जाती है। लेकिन हम लोग माधव को भजते नहीं। माधव का अर्थ है जो लक्ष्मी के पति हैं, जो लक्ष्मी का भी पालन करने वाले हैं। लेकिन हम भगवान के पास आने के बाद भी हम उसी चीज को मांगते हैं जो हमें इस संसार में फंसाए रहे। भजन करना चाहिए निस्वार्थ भाव से, एक भाव जरूर रहना चाहिए कि हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे हैं। यह बंधन नहीं दे सकता। जो भी चीज इस संसार में हम मांगते हैं उससे बंधन उत्पन्न होता है, लेकिन कृष्ण की कृपा की याचना करते हैं कि हे कृष्ण हम आपके हैं और आप हमारे हैं, तो यह अपना सच्चा संबंध है। और इसको हम आते आते ही भगवान के सामने भूल जाते हैं, बस आंखें बंद कर लेते हैं, बस मुझे वही चाहिए जो हम लेकर के आए थे। अरे भगवान के समक्ष आओ तो हृदय और आंखों को खोल करके उनका प्रेम मांगो, उनकी कृपा मांगो, और उनकी कृपा मिल जाए तो और किसी की कृपा की जरूरत नहीं। मांगना जरूर चाहिए भगवान से, उनकी याचना प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। इस तात्पर्य को पढ़ने के बाद एक श्लोक रूप गोस्वामी ने उपदेशावृत में लिखा है, उसके संबंध में थोड़ा समय बोलने का प्रयास करूंगा कि जीव को प्रकृति के नियमों तथा अपने अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करना होता है। प्रकृति के नियमों के अनुसार, अर्थात जो प्रकृति के तीन गुण हैं उनके प्रभाव में हम चढ़ते उतरते हैं और उन्हीं के भावा के अनुसार हम कुछ काम में लिप्त होते हैं जिससे हमारा अगला शरीर बनता है। जीव को प्रकृति के नियमों तथा अपने अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करना होता है। अतः वैदिक आदेश है, सुनिए ध्यान से, अतः वैदिक आदेश है कि भौतिक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों को ऐसे निर्देश दिए जाएं जिसमें वह अपने कार्यों को भगवान की सेवा में लगा सके और बार बार जन्म मृत्यु के भव बंधन से छूट सके। यह वैदिक आदेश है। हम तब इस संसार से छूट पाएंगे जब हम सारे कार्यों को भगवान से जोड़ लेंगे। यह वैदिक आदेश है, प्रभुपाद ने लिखा है। स्वकर्मणा तभी अर्चम सिद्धि विदन्ति मानवा। अगर कोई भी मनुष्य अपने जीवन में सिद्धि की प्राप्ति करना चाहता है तो वह अपने कर्म को भगवान के संबंधों से जोड़ दे, अर्थात उस कर्म को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करे। प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है कि मनुष्य बिना इच्छा किए जी नहीं सकता है, जबकि हम इच्छाओं के कारण ही संसार में बंधते हैं, लेकिन उन इच्छाओं को अगर हम भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं तो वही इच्छा हमें संसार के बंधनों से छुड़ा देगा। भगवान तो सदा ही निर्देश देने के लिए तत्पर रहते हैं, निसंदेह उनके निर्देश भगवद गीता में विस्तार से दिए हुए हैं। यदि हम इन निर्देशों का लाभ उठाएं तो प्रकृति के नियमों से बद रहकर भी हम अपनी मूल स्थिति प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो सकेंगे। भगवान ने गीता में मुख्य रूप से तीन उपदेश दिए हम लोगों के लिए। कौन कौन से उपदेश हैं? उन्होंने तीन श्लोक दिया और तीन श्लोकों में पूरी भगवद गीता है और उन तीन श्लोकों के अलावा एक ही श्लोक के अंदर भगवद गीता पूरी है। गीता के नौवें अध्याय के अंदर भगवान का दो आदेश और गीता के 18वें अध्याय के अंदर भगवान का एक आदेश। अगर केवल इन तीनों आदेशों को अगर हम लोग अपने जीवन में उतार लेते हैं तो कभी भी हम अपने बंधन को छोड़ने में आसानी का महसूस ही करेंगे। भगवान ने कहा सतत मेरे नाम का कीर्तन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। दो श्लोक तो नौवें अध्याय में उन्होंने कह दिया और गीता के 18वें अध्याय में कहा कि जब इनसे और ऊपर उठना चाहते हो तो कहीं किसी से संबंध, किसी के ऊपर कुछ विश्वास मत रखो। माम एकम शरणम व्रजन, बस तब एकाकी भक्ति होगी। व्यभिचारिणी भक्ति नहीं करना है, अव्यभिचारिणी भक्ति करना है। अगर कृष्ण के लिए ही कृष्ण ही शरण हम लिए हैं, केवल कृष्ण का ही शरण लिए हैं तो कोई बंधन हमारे लिए कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गच्छन्ति। जो चारों कुमार थे उनके हृदय का, उनके मन का, उनके किए हुए कर्मों का एक ही उद्देश्य था कि हरि के शरण में जाना है, हरि के शरण में जाना है, हरि के ही शरण में रहना है। क्योंकि इस प्रकार की भावना अगर उत्तरोत्तर हमारी बढ़ दी जाएगी तो बंधन इस संसार में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हैं कि माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। यह भी गीता के अंदर एक निर्देश दिया गया है कि अगर एकांती भक्ति करता है, एकाकी भक्ति करता है, तो हमारे माया से भगवान कहते हैं कि वो तरंतिते, मैं उसको छुड़ा दूंगा, उसके ऊपर बंधन नहीं लगने दूंगा। हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं और यदि हम उनकी शरण ग्रहण करें तो हमारा भार उठा करके हमें बता सकेंगे कि किस तरह भौतिक जीवन में छूटकर हम भगवत धाम को जा सकते हैं। ऐसी शरणागति के बिना मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार शरीर विशेष धारण करना पड़ता है, कभी कभी पशु का तो कभी कभी देवता का। यद्यपि शरीर यथासमय मिलता और विनष्ट होता है किंतु आत्मा शरीर में मिलता नहीं, अपितु उन गुण विशेष के वशीभूत होता है जिससे वह पाप पूर्ण ढंग से जुड़ा रहता है। आध्यात्मिक शिक्षा से मनुष्य की चेतना बदल जाती है जिससे वह भगवान की आज्ञाओं का पालन करता है और प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसके संबंध में रूप गोस्वामी ने पद्यावली में एक श्लोक दिया है जिससे हम लोग कैसे भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं उसके विषय में उन्होंने लिखा है। वात्सल्ययाद भय भय प्रदानात समयादा आर्तित निर्वापणा दीर्दाया तक शोषणा दड़ गति श्रेय पद प्राप्णात् सेव्य श्रीपतिरेव सर्वजगत्ता मेतेजतः सक्षिण प्रहलादश्च विभीषणश्च करीराट पांचाल्या हल्या ध्रुव। इसमें छह कारण बताए गए हैं, छह प्रकार से हम भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं और इन संबंधों में केवल भगवान का प्रेम ही दिखाई देता है। कोई कहता है, कोई भक्त कहता है कि जिनकी इच्छा शक्ति से समुद्र मंथन समुद्र स्थल और स्थल समुद्र बन जाता है एवं धूलिकण पर्वत और पर्वत धूलिकण बन जाता है और वज्र तृण से भी बलहीन हो जाता है, अग्नि शीतल एवं परम शीतल हिम भी अग्नि भाव को प्राप्त हो जाता है, अतएव जिनकी लीला शक्ति दुर्गे है एवं भूत अचिंत्य गुणागण महान स्वरूप सर्वथा अद्भुत श्री कृष्ण के लिए हमारा कोटि से प्रणाम है। कवि कहता है कि वात्सल्य अभय पीड़ित व्यक्तियों को पीड़ा से छुड़ाना, उदारता पापी के अशेष पापों को नाश करने की शक्ति और शरणागत को अगणित मंगलदायी पदों को प्राप्त करा देना, इन पूर्वोक्त छह हेतुओं के कारण श्रीपति भगवान ही एकमात्र संपूर्ण जगत के आश्रयदाता है, आराध्य देव है। वात्सल्य मतलब जो माता पिता का प्रेम है वह भगवान ही दे सकते हैं और किसी के अंदर कोई शक्ति नहीं है जो असलियत वात्सल्यता के पद को निभा सके। इसमें किंचित संशय नहीं, कारण के पूर्वक छह हेतुओं की सार्थकता के साक्षी क्रमशः छह लोगों का उदाहरण भी दिया गया है। इसके अंदर वात्सल्य के उदाहरण है प्रहलाद जी कि जिनको उनके ही पिता और उनके सारे संबंधी उनको मारने का प्रयास किए, लेकिन उनकी एकाकी विश्वास था प्रहलाद जी को कि अवश्य रक्षिवे कृष्ण करिवे विश्वास, लाख हमारा पिता या हमारे पिता के भी पिता प्रयास करे मारने के लिए, लेकिन जो हमें रक्षा करने वाला है वो हमें मरने नहीं देगा। और अभय प्रदान की प्रतिज्ञा भगवान किसने किसको दिया, तो विभीषण को। सोने की नगरी को त्याग करके और अपने भाई के उन सब सारे संबंधियों को त्याग करके जब भगवान के शरण में, भगवान राम के शरण में विभीषण आए, तो भगवान राम ने उन्हें अभय प्रदान कर दिया, लंकेश कह करके पुकारा। लंका के इस मतलब लंका के राजा, इस शब्द को सुनकर के लोग दिग्भ्रमित हो गए, जिसको मारा गया निकाला गया और वो रावण भी, अरे वो राजा भी बन गया, लंकेश कह दिया भगवान ने। लेकिन भगवान राम को पता था कि जो मेरे शरण में आ गया तो केवल रावण के भय से यहां आया तो मैं सदा के लिए उसे अभय दान दे देता हूं, अब ये किसी के डर से भयभीत नहीं होगा। विभीषण को भगवान ने अभयता का वरदान दिया। केवल इसके पीछे क्या कारण था, तो एकमात्र भगवान का उसने शरण लिया। और पीड़ित व्यक्ति को पीड़ा से छुड़ाना, इसका उदाहरण इसमें दिया गया है गजराज। गजराज को जब ग्राह्य ने ग्रसित कर लिया था तो उसके सारे संबंधी अपने अपने ताकत लगा चुके और गजराज भी अपना सारा प्रयास कर लिया, लेकिन ग्राह्य के फंदे से अपने को छुड़ाने में असमर्थता व्यक्त किया, तब भगवान का एकमात्र उसने सहारा लिया। जिस तालाब में वो जल क्रीड़ा कर रहा था उसी तालाब से एक फूल अपने सूंड में उठाया और भगवान के चरणों में निवेदित किया, और भगवान ने अपना पद वहां निभाया, अपने भक्त की रक्षा उन्होंने किया कि एक पीड़ित व्यक्ति को, एक दुखित व्यक्ति के दुख को कैसे छुड़ाया जाए। भगवान ने यह दृश्य गजराज के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा दिया कि हम अपने भक्तों को कभी दुख में नहीं देखना चाहते। चौथा है उदारता। उदारता का उदाहरण द्रौपदी के प्रसंग से हम लेते हैं। किसी भी साधारणता स्त्री को अपने पति के ऊपर पूर्णतः विश्वास होता है, वैसे ही द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन जब असहाय की स्थिति, जब उसके जीवन में परिस्थिति आई तो 5 के 5 कुछ नहीं कर पाए, और भगवान ने अपनी उदारता दिखाया। उसकी रक्षा किया। और आगे है स्वशरणागत को, मतलब जो शरण में आया है तो उसको, मतलब अशेष पाप को अशेष बना देना। भगवान ने इसका उदाहरण अहल्या के माध्यम से दिया। कि वो पत्थर बन चुकी थी, लेकिन भगवान राम ने अपने स्वचरणा रविंद का प्रेम दे करके उसको अपनी कृपा दिया। आप सोचिए भगवान की योग्यता के ऊपर भी एक बार विचार कीजिए कि भगवान क्या नहीं है, कितने बड़े कृपालु, कितने बड़े दयालु, कितने बड़े रक्षक, कितने बड़े प्रेम करने वाले हैं। हम इसके पीछे इसके गहराई में जाकर के देखें तब पता चलेगा कि भगवान की भगवत्ता क्या है। और छठा उदाहरण है शरणागत के प्रति, जो शरण में आया तो भगवान ने उसको ऐसा पद दिया कि उस पद को भी लेना नहीं चाह रहा था। उसके उदाहरण ध्रुव महाराज हुए कि हेतु भक्ति उन्होंने किया कि हमें अपने प्रपितामह से भी अच्छा पद चाहिए, लेकिन भगवान ने उनको अपना ऐसा कृपा दिया कि उस जिस चीज की भावना से उन्होंने भक्ति किया वो चीज भी लेना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने दिए। तो कोई ना कोई कारण बना करके भी अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान की भगवत्ता को हम प्राप्त करते हैं, उनकी कृपा हमें मिल जाती है। और इन्हीं छह स्थितियों में से हम किसी को अगर एक को भी पकड़ करके भक्ति करते हैं तो भगवान हमारा हर प्रकार से सहायता करते हैं। हरे कृष्णा। समय के ऊपर बार बार आंखें जा रही है, ध्यान उधर बट रहा है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जेन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशितः, जिस स्थिति में है जहां भी हैं हम, लेकिन हर समय भगवत कृपा का अवलोकन करें, भगवान की कृपा को देखें। और भगवान की कृपा को देखते हुए अगर हम उनकी कृपा के लिए अगर बदले में कुछ कहना चाहें तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और हम इस संसार से छूट सकते हैं। और यही सबसे इस बंधन को छोड़ने के लिए मजबूत उपाय है, जिससे हम इस संसार के बंधनों से अपने आप को छुड़ा सकते हैं। तो जिस शारीरिक की धरातल में हम लोग फंसे हुए हैं उनको छुड़ाने की स्थिति अपने अंदर उपज करने के लिए हम कातरमयी या भावमयी, स्नेहमयी, वात्सल्यमयी किसी भी प्रकार की भावना से हम भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना करेंगे तो भगवान जरूर सुनेंगे और हम इस संसार से अपने को छुड़ा लेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, गौर हरि प्रमानंदे।